Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanandji. Thank you. Om Namah Shivaya.
ये थोड़ी देर में समझने की बात है, ये पदार्थ क्यों सच्चे दिखाई देते हैं। इसी तरह से देह के शरीर है, संसार है, प्रत्येक पदार्थ है, ये इसलिए सत्य दिखाई देता है कि तुम सत हो। सद सदमित उत्थतम सदिति, सत के कारण सत्य दिखाई दे रहा। एक बात तो ये, दूसरी आकाश की तरह व्याप्त आत्मा है, उस आत्मा में ही शरीर अध्यस्त है। शरीर में आत्मा नहीं है, बल्कि आत्मा में शरीर अध्यस्त है। अध्यस्त माने विनय हुए भाषित हो रहा है, हुआ है नहीं, भाषित हो रहा। जैसे आकाश में देखो तो वो बादल हाथी के शकल के बने होते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं किसी प्रकार का आकार विशेष बादलों का होता है, तो आते हैं जाते हैं। आकाश को कोई मतलब नहीं, कोई आकार बनाओ, कोई कल्पना करो, कोई तुम देखो, इससे क्या उसको लेना देना। इसी प्रकार से आत्मा है, आत्मा सत्य नित्य व्याप्त है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है। उसी बात को यहां कह रहे हैं सर्वभूतस्मात्मानम, अर्थात संपूर्ण भूत प्राणी जितने भी हैं। भूत में क्या है, भूतम 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 भवंती, तो ये कई प्रकार से उदय होते हैं, कई प्रकार से लय होते हैं। तो उदय और लय की अवस्था तो है भूत प्राणी में, लेकिन स्थाई आत्मा है। तो स्थाई आत्मा में उदय और विलय दिखाई देते हैं, जैसे आकाश में बादल कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो जैसे तिल में तेल है, रुई में वस्त्र में रुई है, और लकड़ी में अग्नि है, ऐसे ही इस संपूर्ण पदार्थ मात्र में आत्मा चेतन विराजमान है। लेकिन उस चेतन की सत्ता को इतना ध्यान रखना चाहिए, ये न मान ले कि हमारे किसी शरीर के एक अंग में एक अंश में आत्मा विराजमान है। वो तो आकाश की तरह नित्य व्याप्त है, सर्वभूतस्थम आत्मानम। अब अगर ये कहोगे संपूर्ण भूत प्राणी मात्र में आत्मा का निवास है, तो फिर एकांगी हो गया बोलना सर्वभूतानि चात्मनि। ये जो आत्मा में एक पदार्थ जो दिखाई दे रहे हैं, वो भी आत्मा में ही दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा अच्छा मंत्र है, इसी को गीता में कहा गया। गीता के 6वें अध्याय के 29, 30, 31, ये तीन मंत्र बहुत जानने लायक। वहां भी है सर्वभूतस्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। ईशा उपनिषद में भी यही है, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी यही मंत्र है। उसमें है ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। ईक्षते योग युक्त आत्मा, योग युक्त जो होता है वो इस बात का अनुभव कर पाता है, ये जीव है, जीवात्मा का वर्णन है। माने वही अनुभव इसका कर पाएगा कि सब प्राणियों में आत्मा है, और आत्मा में सब प्राणी दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसमें एक बात समझ में दिखाई दे रहा है कि संपूर्ण प्राणी मात्र परमात्मा में है, ये बात दिखाई देने वाले को दिखती है, क्योंकि परमात्मा में सब प्राणी होंगे। अगर तो द्वितीयता हो जाएगी तो प्राणी भी हैं और परमात्मा भी है, दो हो जाएंगे ना। तो अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए ये कहा जाएगा कि देखने वाले को दिख रहा है। जैसे एक दीवार में शीशा लगा था तो जो सड़क पर निकले सो उसका प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे जाए। तो एक सज्जन गए शीशा के पास, बोले भैया तुम्हारे पास कितने कमरे बने हैं? ऊंट गधा सज्जन दुर्जन जो सड़क पर निकलता हो तुम उसको रख लेते हो अपने पास। तो दीवार के लगे शीशा ने कहा कि भैया ऐसा है मेरे पास न कोई कमरा है न कोई रखने की जगह है और रखता भी नहीं हूं मैं। फिर बोले तुम्हें दिखाई देता है, ये बात समझने की है, तुम्हें दिखाई देता है सड़क पर जो व्यक्ति निकलता है उसका प्रतिबिंब इसमें दिख जाता है, हम में कुछ नहीं है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं नचमस्ते स्थानि सर्वभूतानि, आप पहले कहते मत्ता स्मृति ज्ञान पोहन अमत स्थानि सर्वभूतानि पहले कहा और फिर कहा नचमत स्थानि सर्वभूतानि, ये तीसरा चौथा पांचवा श्लोक नवे का। तो संपूर्ण भूत प्राणी मात्र हमें प्रतीत होते हैं, हमें दिखते हैं, तो देखने वाले को इसलिए सावधान किया गया कि वो समझ ले कि हम ही में प्रतीत हो रहा है। जैसे रस्सी में ही सर्प प्रतीत हो रहा है और सर्प का भय भी होता है, डरता भी है, भागता भी है, उसको मारने का प्रयास भी होता है, ये सब होता है। लेकिन अगर विचार करके देखो तो रस्सी में सांप है थोड़ी, तो जैसे रस्सी में सांप नहीं है लेकिन देखने वाले को दिख रहा है, ऐसे परमात्मा में जगत है नहीं देखने वाले को दिख रहा है। इस बात को देखने के लिए कहा है, समझने के लिए कहा है, सर्वभूतस्समात्मानम् सर्वभूतानि चात्मनि, आत्मा में सब पदार्थ प्राणी भूत प्राणी उदय और विलय ऐसे हो रहे हैं जैसे आकाश में बादल उदय विलय होते हैं। संपश्यन् ब्रह्म परमम्, इसीलिए कहा कि पश्यन् माने सम और उपसर्ग लगा दिया। ये जो पश्यद बनता है ये व्याकरण में दृश्य प्रेक्षण धातु है, अदृश्य का पश्य आदेश हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे शीशा में अपना प्रतिबिंब दिखता है ऐसे अपने को देखने के लिए पश्यद ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान नेत्रों से देखते हैं। यहां जहां कहीं प्रयोग पश्यति का आएगा वो दृश्य को दृष्टा के रूप में ही दृश्य है, दृश्य दृष्टा में ही है, ये समझना चाहिए। संपश्यन इसलिए उपसर्ग लगा दिया, संपश्यन ब्रह्म परमम्। इस प्रकार से जो कोई देखेगा कि संपूर्ण प्राणी मात्र में परमात्मा है और परमात्मा में ये प्राणी मात्र दिखाई दे रहे हैं, ये कोई जो देखेगा नान्य ने हेतुना, और कहते हैं और कोई हेतु कारण नहीं है ये परम पद को प्राप्त करने के लिए, वही एक समर्थ हो पाएगा जो इस बात को समझ लेगा। इसीलिए कहा गया संपश्यन, देखता हुआ जो देखेगा जो वो समझेगा वो इस बात को समझ पाएगा, और कोई हेतु नहीं है और कोई कारण नहीं है और किसी हेतु के द्वारा नहीं जान सकता ना परम परमात्मा को प्राप्त कर सकता। तो परमात्मा को अपनी आत्मा के रूप में अनुभव करने वाले जो महापुरुष हैं उनके लिए संपश्यन शब्द का प्रयोग आया, जो ऐसे देखते हैं वो देख पाएंगे। सर्वभूतस्तम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन ब्रह्म परमम्। नान हेतुना, ये और कोई कारण नहीं है। आप देखिए एक बड़ा विचित्र मंत्र है अगला मंत्र। उस विचित्र मंत्र में क्या विशेषता है, यही श्रीमद् भागवत में है, श्वेताश्वतर उपनिषद में भी है, और मुंडक में भी है, और मांडूक कारिका में भी है। देखो ये मुंडक में जो दिया गया वो बड़ा विचित्र है। आत्मानम अरणिं कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम, ये इतना सुंदर मंत्र है। और कहते हैं ज्ञान निर्मथन अभ्यासात अभ्यासात, और क्या कहते हैं, पाशम दहति पंडिता। अब पंडित जो होगा, जो सद सद विवेकनी बुद्धि आसा पंडा पंडा संजाता इति पंडिता, इतच प्रत्यय हो गया इसमें। माने ये सद है, ये असद है, ये नित्य है, ये अनित्य है, ये रखने लायक है, ये नहीं रखने लायक है, इस प्रकार की विचार करने वाली बुद्धि को पंडा कहते हैं। और पंडा बुद्धि जिसको मिली है उसको कहते हैं पंडित। पंडित शब्द इस तरह से बना। तो कहते हैं पास को काट देता है पंडित, जो ये समझता है कि नित्य है ये अनित्य है, इस प्रकार का विवेक करने वाला जो पंडित होता है वो कर देता है। कैसे, आत्मानम अरणिं कृत्वा, तो जो अग्नि प्रकट की जाती यज्ञ में, वो आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी, दो प्रकार की लकड़ी ऐसी रखी जाती, ऊपर एक नीचे। तो यहां पर बताई ऊपर वाली लकड़ी आत्मा है और नीचे वाली प्रणव है ओंकार। तो आत्मानम अरणिं कृत्वा, आत्मा को अरणी बनाओ और उत्तर अरणी को बनाओ प्रणव, और ज्ञान निर्मथन अभ्यासात, फिर इसका मंथन करो, तो उससे क्या हो, प्रकट होगी अग्नि। और अग्नि जैसी प्रकट हो गई, उस अग्नि से पाशम दहति पंडिता, ओ समझदार व्यक्ति जो होगा, जो नित्य और अनित्य को जानने वाला होगा, वो इसको पाश को काट देगा। ये पास कैसा है, ये पास है बंधन। अब जरा विचार करो, सचमुच में क्या बंधन है, ये हमारे सन्यासियों में ये प्रचार है, इसका प्रणव का बड़ा महत्व है, जो कहा गया है यहां प्रणवम उत्तरारणिम। आत्मा को अरणी बनाओ और उत्तर अरणी को प्रणव बनाओ और फिर निर्मथन करो। अरे जैसे वो बर्मी में रस्सी लपेट के ऐसे से करते हैं ना, तो छेद होता चला जाता। इसी प्रकार से अग्नि को प्रकट करने के लिए एक लकड़ी पर लकड़ी रखते हैं और फिर बीच में उसको मथन करते हैं, तब वो अग्नि प्रकट होती। वो अग्नि से तुरंत संपूर्ण गुण सहित माया अविद्या निवृत्त हो जाती। तो अविद्या निवृत्त समकाल ही मुक्ति है। अविद्या समकाल इसलिए कहा गया कि जिस समय, ऐसा नहीं है कि अविद्या निवृत्त आज होए और कल मुक्ति मिले। मुक्ति का मतलब ही ये है कि अपने को ब्रह्म रूप से समझ लेना। इसीलिए श्रुतियां और वेद सब बंद हो जाते हैं, एक अद्वितीय ब्रह्म रह जाता। अमतम मतम भवती, अविज्ञातम विज्ञातम भवती, अश्रुतम श्रुतम भवती। जो नहीं सुना है सो सुना जाता है, और जो नहीं देखा जाना है वो जान जाया जाता है। ये विशेषता है। तो जब इस बात को आप जान जाएंगे, कि कैसे आत्मा को अरणि बनावे और कैसे प्रणव को अरणि बनावे और फिर कैसे मथन करें, और मथन मंथन करने से जो अग्नि प्रकट होगी वो अग्नि हमारे संपूर्ण पाश को काट देगी। पहले ये सोचो पाश ही क्या है। एक बेटी को हुआ कैंसर और वो तो बड़ी निश्चिंत है और माँ खोपड़ी पटक रही, हाय हाय बेटी को। तो पूछा गया कि भाई क्यों तुम क्यों रो रही, बोले अरे हमारी बेटी है ना, मेरी बेटी है। अब यही है, ये बंधन है, ये पाश है। सच पूछो ये पाश कैसे कटे, ये बंधन कैसे निवृत्त हो, बोले इसकी एक युक्ति बताई। वो युक्ति है, अगर वो युक्ति समझ में आ जाए तो बंधन कट जाए। अब देखिए जरा विचार करो, ये कैसे प्रणव को ओंकार को कैसे उत्तरारणी बनाते हैं। तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत की, स्वप्न की, सुसुप्ति की। जागृत अवस्था को जो देखने वाला है वही स्वप्न की अवस्था को देखता है। तो जागृत और स्वप्न का जो देखने वाला वही सुसुप्ति माने अभाव को भी देखता है। तो दृष्टा एक ही हुआ, जागृत का जो दृष्टा है वही स्वप्न का दृष्टा है, वही सुसुप्ति का भाव का भी दृष्टा वही है। तो दृष्टा तो एक हो गया सब पूरे ब्रह्मांड का। बस इतना ही वेदांत बताता है, योग में और वेदांत में इतना ही अंतर है। योग ये कहता है कि मैंने अनुभव किया, दृष्टा को प्रकाश में देख लिया, स्वरूपे अवस्थान स्वरूप में अवस्था देख ली, और वो व्यक्तिगत जो आदमी अलग अलग जो समाधि लगाता है उसको आत्मा का प्रकाश प्राप्त होता है। वेदांत कहता है नहीं, ये जो आपने देखा वो सब में है और सब उसको देख सकते हैं, सब में है और सब उसको देख सकते हैं। तो फिर क्यों, क्या कसर क्या है? बोले कसर यह है कि सब लोग देख नहीं पाते। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान नेत्र से ही वो बात दिखाई देती है, इसलिए मूढ़ लोग नहीं देख पाते। अब इस बात को जब आप समझ जाएंगे कि आत्मा को अरणि बनाने से और प्रणव को उत्तरारणी बनाने से ज्ञान की अग्नि कैसे प्रकट होती है, ये अनुभव की चीज है। यूं तो सुनने के लिए आपने सुन लिया और इसने सुना दिया, लेकिन ये तो प्रैक्टिकल प्रयोग है कि जब आप ओमकार का जप करें और जप करते करते ये बात समझ में आ जाए कि अरे भाई जो जागृत को देख रहा था वही तो सपने को देख रहा है और वही तो सुसुप्ति के अभाव को देख रहा है। और वो है कौन? बोले मैं ही तो हूं, मैंने ही जागृत देखा, मैंने ही स्वप्न देखा, मैंने ही अंतःकरण और सब जगत के अभाव को भी देखा। तो मैं दृष्टा हुआ, तो इस शरीर में जैसे मैं बोला जा रहा है ऐसे तो सबके शरीर में मैं तो एक ही हुआ। मैं एक वचन है, मैं एक ही है, बहुत भीड़ होने पर भी मैं अकेला ही है, मैं तो एक ही होता है। सबका सब जो जो अपने को कहेंगे वो मैं तो वही मैं समष्टि का मैं एक है और सबका दृष्टा है। अगर ये बात समझ में आ जाए तब फिर क्या होगा? बोले सबका दृष्टा मैं और सबका चेतन मैं, जो चेतन जो चित है, चित तत्व तो, वो भी तो उसी को हो गया। तो विश्व भी एक, तेजस भी एक और अंत में प्राग भी एक। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों भावों को देखने वाला, तीनों अवस्थाओं को देखने वाला एक ही है। इस बात को समझाने के लिए ये आ ऊ मा बताए गए। आकार स्थूल शरीर है और जागृत अवस्था है, विश्व इसका नाम है और इसी को समष्टि में विराट बोलते हैं। विराट और नाम इसका वैश्वानर, और इधर स्वप्न अवस्था है, तेजस इसका नाम है और सूक्ष्म शरीर है, और उधर समष्टि में इसी को हिरण्यगर्भ बोलते हैं और नाम इसका सूत्रात्मा है। तीसरे मकार में सुषुप्ति अवस्था है और कारण शरीर है, प्राग नाम है और समष्टि में प्रकृति और ईश्वर नाम है। सारी प्रकृति जितनी भी प्रकृति परापरा सब बताया। क्षर तत्व उसको प्रकृति कहेंगे, क्षर तत्व या अपरा प्रकृति। तो जितना भी, इसीलिए कहा गया यस्माद् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमा अतोस्मलोके वेदे च प्रसिद्धा पुरुषोत्तमा। मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे, उसने भगवान ने स्वयं कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही समझो। माने जो जीवात्मा है वही परमात्मा है, जो परमात्मा वही जीवात्मा है। जैसे बार बार आप सुनते हो समुद्र है, बुदबुद है, उसकी तरंग है, लहर है, फेना है, सबका सब समुद्र ही तो है। इसी प्रकार से जैसे समुद्र का फेना है, बुदबुद है, तरंग है, लहर है, इसी प्रकार से विविध नाम रूप बनाए जाएं, लेकिन है तो आत्मा एक ही। इसी प्रकार से इस ज्ञान को लेकर के ही आत्मानम अरणं कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम कहा गया। ज्ञान निर्मथन अभ्यासात, इसको अभ्यास इसलिए कहा गया कि ये ध्यान योग से इसको देखा जा सकता है। और जब इसको देख लोगे, समझ लोगे, विचार कर लोगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि संपूर्ण पाश कट जाएगा। अब तो आप लोगों के हम समझे पाश कट ही गए होंगे। बोलो कृष्ण भगवान की जय।